तारीख 16 दिसंबर दिन सोमवार, कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जामिया यूनिवर्सिटी की वीसी ने कहा कि परिसर में घुसकर छात्रों को पीटना स्वीकार्य नहीं।
हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को मारपीट करना, वो जो बैठे इनोसेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल।
नागरिकता कानून के विरोध की आंच अलीगढ़, लखनऊ के साथ साथ अन्य संस्थानों तक पहुंची।
स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी ऐसा वायलेंट एक्ट ना करें जिससे कि माहौल खराब हो।
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की रैली, जनता बोली।
हमारे डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश करते थे, बंगाल में हम लोग किसी कीमत पे हर घर से खून बहेगा, लेकिन NRC कैब हम लोग लागू होने बंगाल में नहीं देंगे।
आपकी राय भी होगी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार सूर्यांशी पांडे से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित नागरिकता कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। एक के बाद एक कई ट्वीट्स में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भारतीय को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अशांति का माहौल पैदा करने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार बताया है। इस बीच दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भारत के अलग अलग शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सेंगर की सजा पर 17 दिसंबर को बहस होगी, उसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। कुलदीप सेंगर पहले BJP के विधायक थे, जिसे बाद में पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। अदालत ने इस मामले में CBI को फटकार भी लगाई है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
2 साल पहले उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर पर उन्हीं के गांव की एक लड़की ने सेंगर पर अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त लड़की नाबालिग थी। लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप पर पुलिस ने लड़की की रिपोर्ट दर्ज की। इस बीच लड़की के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और पिछले दिनों रायबरेली के पास एक ट्रक एक्सीडेंट में पीड़ित लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया और 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
ये थे BBC संवाददाता समीर आत्मज मिश्र। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच 7 महीनों से जारी झड़पों की पृष्ठभूमि में हांगकांग पुलिस का जमकर समर्थन किया है। बीजिंग की यात्रा पर आई हांगकांग की नेता कैरी लैम ने मुलाकात के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के दर्जे के साथ कानून सम्मत तरीके से प्रशासित करने के लिए हम आपका इसी तरह समर्थन करते रहेंगे। हम हांगकांग में सभी वर्ग के लोगों से आशा करते हैं कि वे हांगकांग के विकास के लिए एकजुट रहेंगे। ये थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ AK अब्दुल मोमेन ने कहा है कि भारतीय नागरिक बांग्लादेश में अच्छी अर्थव्यवस्था और मुफ्त में भोजन के लिए आ रहे हैं। मोमेन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर और मधुर हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि जो भारतीय बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या भारतीय बांग्लादेश में घुस रहे हैं। उन्होंने भारत दौरे को रद्द करने के संबंध में पूछे गए सवाल पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। ईरान में एक अग्रणी मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि ईरान के अधिकारी पूरे देश में उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रहे हैं जिन पर पिछले महीने भड़के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का संदेह है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 300 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। मानवाधिकार समूह का मानना है कि हिरासत में लिए गए लोगों में किशोर उम्र के लड़के भी शामिल हैं जिन्हें कई तरीकों से प्रताड़ित किया गया है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद से धरना प्रदर्शनों का दौर देश के कई हिस्सों में जारी है। सबसे पहले बात जामिया मिलिया इस्लामिया की। जैसा कि आप जानते हैं कि कल दिल्ली के जामिया इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो उठा था। जामिया से लगे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर आंसू गैस के गोले दागे। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस छात्रों को लाठियों से पीटती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर कल रात देर बड़ा प्रदर्शन हुआ। जामिया परिसर में तनाव है और यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। आज भी जामिया में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सलमान रावी सुबह से वहीं पर हैं। उन्होंने बात की कुछ छात्र छात्राओं से।
लोग हैं हम इसमें नहीं है। कोई दंगा फसाद हम करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट में मारा गया बच्चों को, जबकि कोई बच्चे वो प्रोटेस्ट में भी नहीं थे। इन्होंने इंसानियत का मर्डर किया है, लोकतंत्र का मर्डर किया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है इस देश में। हम पीसफुल प्रोटेस्ट आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस चीज को हटाया नहीं जाएगा।
आप तिरंगा लिए खड़े हैं?
सर, हम अपने संविधान को बचाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हमें अपना संविधान बताना है। जो हिंदू और मुस्लिम जो कर रहे हैं इसके खिलाफ है। हम सीएबी
नहीं चाहते कि हमारा जो इतना महान देश है, इतने सालों से हम भाई भाई बनकर रहे हैं, और कोई भी आए और वो धज्जियां उखाड़ दे हमारे देश की। हम चाहते हैं वो अखंडता, वो भारत, वो जो था वो बना रहे, उसकी हमारी लड़ाई है और इस गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई है। बस
हमारा स्टैंड बाय नोट अ चांस। हम चॉइस से अपने रहे थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, किसी के चांस से नहीं रहे थे।
हमारी बन गया है, हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कौन करेगा हमारे लिए? हमारे लिए स्टैंड लेने वाला कोई है ही नहीं।
इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और जिस उदारता के लिए हिंदुस्तान बाहर जाना चाहता था कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, लेकिन इन लोगों ने वही चीज खत्म करी है यहाँ पर आकर के। उसी चीज के खिलाफ है, इस झंडे को बचाना है हमें।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये आवाजें। जामिया के छात्रों की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई करेगा। जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा कि जामिया में बिना अनुमति के पुलिस का कैंपस में आना स्वीकार्य नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई से हमें धक्का लगा है। उन्होंने कहा,
यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। लाइब्रेरी के अंदर बच्चों के मारपीट करना, वो जो बैठे इनोसेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जाए। क्या ऐसा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज के लिए रूल बन रहा है कि आपके यहाँ पुलिस घुस जाएगी? ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और दो बच्चे मर गए, इस तरह की। हम सब उसको डिनाई करते हैं। जामिया का कोई भी आदमी ना मरा है ना इसके इस पूरे में। जो इंजर्ड है उनकी लिस्ट है हमारे पास, नियरली 200 थे टोटल, उसमें से काफी जामिया के भी हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर इंजर्ड हुए हैं।
जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने बात की DCP साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल से।
DCP चिन्मय बिस्वाल जी हैं, आप देख रहे हैं पीछे हजारों की तादाद में लोग हैं, पुलिस भी यहाँ पर भारी तादाद में है, काफी तनाव है। इस तनाव से निबटना, इसको ईज करना आपकी जिम्मेदारी है, क्या कर रहे हैं आप?
तनाव नहीं है, स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है। और हमने जामिया नगर इलाके में लोगों से अपील किया है, मीटिंग भी किया है, उनसे आग्रह किया है कि कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी बात हो, अपने चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। प्रदर्शन अगर करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, जहां तक परमिसिबल है वहीं तक करें, और हिंसा का उपाय बिल्कुल ना अपनाएं। और हमें उम्मीद है कि लोग अपने तमाम प्रदर्शनों को शांतिपूर्वक रखेंगे।
एक तरीके का अविश्वास छात्रों में दिखाई दे रहा है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर, वो सवाल कर रहे हैं, तो वो विश्वास पैदा करना, शांति की पहली जो नींव होती है, उसकी जो ईंट होती है वो विश्वास होती है, वो विश्वास आप कैसे कायम करेंगे?
हमारे छात्रों के साथ कोई मुद्दा नहीं है। हम यहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर के हम गर्व करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश की स्वतंत्रता संग्राम में इस यूनिवर्सिटी का एक अहम भूमिका रही है। यहाँ छात्रों के प्रति हमारा हम उनके हिफाजत के लिए हैं। लेकिन जिस प्रकार का नमूना हमें देखने को मिला है, पुलिस के ऊपर पथराव करना यूनिवर्सिटी के अंदर से, ये 3 दिन पहले ही शुरू हुआ था, पहले दिन ही शुरू हुआ था। कल भी जिस प्रकार का उग्रता और जो जिस तरह से मॉब वायलेंस हमें देखने को मिला, ये कतई ही छात्रों के लिए ये शोभनीय नहीं है, ना ही छात्रों से इस तरह से अपेक्षा की जाती है।
ये थे DCP साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल, जिनसे बात कर रहे थे दिलनवाज बाजा। इस समय जामिया में क्या हो रहा है, सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को। सलमान, सबसे पहले तो ये बताएं, हमने कुछ आवाजें छात्र छात्राओं की कार्यक्रम के शुरू में सुनी थी जिसमें कि वो अभी भी धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इस समय क्या स्थिति है?
इस वक्त भी धरना जारी है और इस वक्त उतने उग्र नहीं है छात्र जितना पहले थे। धरने में जब सुबह का वक्त था, जब मैं आया था, तो छात्रों ने अपने ऊपर के जो वस्त्र हैं वो खोल कर प्रदर्शन किया था। कड़ी सर्दी में, और उनका ये कहना था कि जो जामिया के छात्र थे उनका इस हिंसा की घटना से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है, चूंकि जामिया मिलिया इस्लामिया उखला के अंदर है तो आसपास बहुत सारी बस्तियां हैं, तो ये भी संभावनाएं हैं कि वहां के जो शरारती तत्व हैं हो सकता है कि वो इस बीच में घुस गए हों। अब चूंकि यूनिवर्सिटी खाली करा दी गई है, 5 जनवरी तक यहाँ पर कोई छात्र रहेगा नहीं, सब अपने अपने घरों के लिए रवाना कर दिए गए हैं, लेकिन आंदोलन फिर भी जारी है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि अब ये जो आंदोलन कर रहे हैं, अब इसमें छात्र कितने बचे हैं और जो मोहल्ले के लोग हैं या फिर नेता लोग हैं वो कितने हैं, क्योंकि इसमें नेतागिरी भी शुरू हो गई है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये जो है अब बड़ा सवाल है कि अभी मामला छात्रों का है या अब नेताओं का है
या आगे कितना आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रावी आपका इस जानकारी के लिए। जामिया के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खाली कराया जा रहा है, सभी छात्रों को आज ही उनके घर भेजा जा रहा है, यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अपने घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक 21 छात्र हिरासत में हैं। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे अलीगढ़ में हैं, आज वो यूनिवर्सिटी में थी। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं प्रियंका दुबे को। तो प्रियंका, सबसे पहले यही बताएं कि जो आज नागरिकता कानून की जिस तरह की बातें जामिया में सुनने को मिली, उसी तरह की आवाजें, उसी तरह की बातें आपको अलीगढ़ में सुनने को मिली?
जी, मुझे बिल्कुल इसी तरह की आवाजें मुझे यहाँ पर भी सुनने को मिली। छात्रों में मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल था और टीचर्स भी छात्रों के पक्ष में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पक्ष में एक स्टेटमेंट जारी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो टॉप लेवल प्रशासन है यूनिवर्सिटी का, प्रॉक्टर रजिस्ट्रार, उनका ये कहना है कि जो पुलिस का जो ताकत का इस्तेमाल किया वो ज्यादा नहीं बल्कि रिस्ट्रेन था। और जबकि असलियत ये है, मैं आज खुद ऐसे छात्रों से मिली हूँ जो बहुत ज्यादा घायल थे, उनके 3 ऐसे छात्र हैं जिनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, एक का तो हाथ भी एम्पिटेट करना पड़ा है, मतलब निकालना काटना पड़ गया, इतनी ज्यादा उनको चोट लगी थी, घायल अवस्था में छात्र वहां पर थे। बहुत ज्यादा तनाव है और अब छात्रों को अचानक से खाली करना पड़ जा रहा है, हॉस्टल खाली करना पड़ रहा है, और जैसा आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ में 1000 से ऊपर जनसंख्या कश्मीरी छात्रों की है, कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है, इतना आसान नहीं है वहां पे पहुंचना, और बहुत सारे छात्र नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के भी हैं जिसकी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है, तो अब छात्र कैसे जाएंगे ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन प्रशासन का, पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने अपनी तरफ से रिस्ट्रेंड रखा था, 21 छात्र उनके डिटेंशन में है, और उसके ऊपर उनका ये कहना है कि जो भी उनको अक्यूज किया जा रहा है एक्सेस फोर्स इस्तेमाल करने के लिए, उनका पक्ष उसमें ये है कि उनके जो पुलिस वाले हैं, 16 पुलिस अधिकारी हैं, 16 पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको भी चोटें लगी हैं, और मैंने एसपी से एसएसपी से भी बात करी, उन्होंने ये बीबीसी को बताया कि हमारा क्या कोई ह्यूमन राइट नहीं है, हमारे लोगों को भी चोट लगी है, और हमने तो रिस्ट्रेन में छात्रों के ऊपर हमने रिस्ट्रेन रखा। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगी बस एक सेकेंड और लेकर, कि हॉस्टल में मैंने खुद देखा कि टीशर्ट्स फेंके गए हैं, बच्चों के जो कमरे हैं उनके बिस्तर हैं उनके ऊपर टीशर्ट्स आए, जो टीयर गैस है वो फेंकी गई है, और बहुत एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया गया था जो कि साफ तौर पर देखने में आ रहा था।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका दुबे की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ इसकी आपने हमें जानकारी दी। उधर लखनऊ में भी ये मामला गर्म है। लखनऊ में दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के छात्रों और पुलिस के बीच में टकराव के कई वीडियो सामने आए। नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी है। अलीगढ़ समेत कुछ शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पूरे ब्यूरो के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
रविवार को दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हुए हिंसक प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ रविवार रात में ही लखनऊ के नदवा कॉलेज के छात्र सड़क पर उतर आए। नदवा कॉलेज के छात्र सोमवार को दिन में एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए निकले। भारी मात्रा में परिसर के आसपास तैनात पुलिस बल ने कॉलेज का गेट बंद करा दिया। छात्र पहले गेट के अंदर से ही नारेबाजी करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस वालों पर पथराव करना भी शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लखनऊ जोन के पुलिस महानिरीक्षक एस के भगत ने बताया,
10-12-15 लड़के निकल के पीछे से पथराव करने की कोशिश किया था, उनको भी खदेड़ते हुए जो है अंदर कर दिया गया है। अभी एब्सोल्युटली जो है नॉर्मल स्थिति है।
हंगामा बढ़ते देख पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां पहुंच गए। कुछ देर के हंगामे के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। वहां मौजूद लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बीबीसी को बताया,
यही सबको सख्त हिदायत भी की दी गई और समझाया भी गया है कि जिसका जो कर्तव्य और कार्य है वही करें। छात्रों का काम पढ़ाई लिखाई करना है, कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अपनी व्यवस्था नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करें।
इस बीच नदवा कॉलेज को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रावास खाली करा दिए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी करके छात्रों को ये सूचना दी और कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राज्य के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि लखनऊ, अलीगढ़ समेत अन्य जगहों पर हिंसा के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी ऐसा वायलेंट एक्ट न करें जिससे कि माहौल खराब हो। डेमोक्रेटिक वे में जो भी वो करना चाहें करें, लेकिन किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ में नहीं लें। और हम किसी भी दशा में उन व्यक्तियों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने पथराव किया है और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। हमने इंटरनेट की सेवा सिर्फ इसलिए बंद की है क्योंकि सभी सोर्सेज जो हमारे अफवाह के हैं उन सबों को हमें कट करना है, उन पर मॉनिटर करना है।
इस बीच अलीगढ़, मेरठ, कासगंज, बुलंदशहर, सहारनपुर और बरेली में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के सभी जिलों में पिछले महीने से ही धारा 144 लागू है।
ये आपने सुनी लखनऊ से समीर राजपंच मिश्र की रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी के साथ अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजधानी कोलकाता में आज कैब के खिलाफ एक रैली की। रैली से पहले वो कोलकाता की सड़कों पर नजर आईं। बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा कोलकाता में है, वहां उन्होंने बात की जनता से।
हमारे डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश करते थे वो मोदी जी ने किया। भारतवर्ष से एनआरसी लागू किया, कैब लागू किया। बंगाल में हम लोग किसी कीमत पे हर घर से खून बहेगा, लेकिन एनआरसी कैब हम लोग लागू होने बंगाल में नहीं देंगे। मोदी हटाओ,
मोदी के हमरा हटाओ।
ये जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जो ये आवाज मोदी सरकार अमित शाह ने ये जो उठाया है पूरे हिंदुस्तान के वासियों के लिए, ये संविधान के खिलाफ है। हम लोग इसका निंदा करते हैं। ना हमें हिंदू से तकलीफ है, ना हमें क्रिश्चियन से तकलीफ है, हम सब भाई भाई हैं।
हिंदुस्तान का मिट्टी में सबका खून शामिल है, जितना कास्ट है सब हिंदुस्तानी सब रहे।
नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बोलिए कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाने के लिए।
हम लोग यहाँ के वासी है, हमारे माँ बाप का खून लगा है, हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ है।
वहां की जनता से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा। सीधे कार्यक्रम में उनको शामिल करते हैं। सबसे पहले रॉक्सी यही बताएं कि आज ममता ने अपनी रैली में क्या कहा।
देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी रैली में सीधे सीधे जो केंद्र सरकार का ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके खिलाफ एक मोर्चा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका जो विरोध है इस एक्ट के खिलाफ वो चालू रहेगा, वो शुरू रहेगा। और जो लोगों को भी ये कहा कि उन्हें विरोध करते रहना है, लेकिन उसको उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पीसफुल मैनर में ये जो पूरा विरोध है वो करना चाहिए और करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अभी और भी रैलियां होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग्स होंगी जिसमें वो पार्टिसिपेट लोगों का पार्टिसिपेशन चाहेंगे।
रॉक्सी, ये तो बात हुई कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, उधर राज्य में क्या चल रहा है, कितना तनाव और कितनी बातें आपको दिखाई दे रही हैं?
जी देखिए, वैसे जो अभी वायलेंस की जो इंसिडेंस थे उसमें तो कमी आई है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में गुस्सा तो बिल्कुल अभी भी है। लोग अभी भी परेशान है ये एक्ट में, एक्ट को लेकर लोगों को पता नहीं है कि क्या होना है आगे, किस तरह से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। और हमने जब बहुत सारे लोगों से बात की तो लोगों का ये मानना था कि ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो तनाव है, जो संवाद की जो जगह है, वो अब धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो एक कम्युनल हारमोनी को भी अफेक्ट होगा, ऐसा उनका मानना है।
बहुत बहुत शुक्रिया रॉक्सी कोलकाता से इस कार्यक्रम में सीधे लाइव शामिल होने के लिए। असम देश में नागरिकता कानून को लेकर सबसे पहले विरोध करने वाले राज्यों में से एक है। पुलिस की गोलियों से असम में अब तक मरने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी है। असम में क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी रवि प्रकाश गुवाहाटी में मौजूद हैं। गुवाहाटी में क्या हो रहा है रवि?
देखिए, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है आज से गन सत्याग्रह का आह्वान किया था।
तो आज यहाँ का लता सिंह ग्राउंड है गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने, वहां पे बहुत लोगों की भीड़ हुई, सैकड़ों लोग थे, उन लोगों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, गाना गाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से विरोध हुआ। और तब वहां से जो आसू के मुख्य सलाहकार हैं समुज्वल भट्टाचार्य और उनके साथ करीब 100 लोग डीसी दफ्तर जा रहे थे मार्च करते हुए, उन्होंने ये नारा दिया कि भाई या तो हमें अरेस्ट करिए या स्क्रैप करिए जो ये नागरिकता कानून में संशोधन आप करना चाहते हैं उसको। तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। इसके बाद ये खबर फैल गई कि अफवाह फैली कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, तो फिर प्रदर्शन कई जगहों पे होने शुरू हो गए। इस बीच गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि नहीं, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है, उन्होंने खुद ही अरेस्टिंग अपनी दी। और इसके बाद समुज्वल भट्टाचार्य को छोड़ दिया गया हिरासत से। तो एक एक बड़ी घटना हुई है। तिनसुकिया जो है, जहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तिनसुकिया में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और आपको ये हैरत होगी कि वहां पे धार्मिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है, ये वैष्णव लोग हैं जिन लोगों ने बड़ी रैली निकाली और कहा कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए कैब को। जो कर्फ्यू लगा हुआ है गुवाहाटी में, उसमें ढील दी गई थी और रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, इंटरनेट पे बैन है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट किए हैं। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि कानून पर हिंसक विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। बहस, संवाद और असहमति लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज जो आई कि दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया और सजा 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी। कार्यक्रम में समीर आत्मन मिश्र को शामिल करते हैं। समीर, हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दीजिए कि उन्नाव का ये मामला क्या था और कुलदीप सिंह सेगर का ये मामला क्या था।
जी मोहनलाल जी, ये तो साल पहले की कथा है जब लड़की ने जो कुलदीप सिंह के उनके उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ अपहरण हुआ, उसका फिर किया गया और शिकायतों के बावजूद पुलिस ने उसका केस दर्ज नहीं किया। उसके लिए बताया गया कि कुलदीप सेंगर चूंकि विधायक है, कई बार के विधायक है, रसूखदार आदमी है, इसलिए उसका केस दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब नहीं किया जा रहा था तो इस लड़की ने एक दिन मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की और ये मामला एकाएक सुर्खी में आया। उसी के एक दिन के बाद की ये घटना है कि लड़की के पिता को कुछ आरोपों में गिरफ्तार किया गया पुलिस ने और पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। इन दो घटनाओं ने इस मामले को काफी आगे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा। और अभी जुलाई में, इसी साल जुलाई में, अचानक एक दिन लड़की का एक्सीडेंट होता है।
तो कुल मिलाकर आपकी आवाज़ बीच बीच में कट के आ रही है। अपने श्रोताओं को बता दें कि अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको दोषी करार दिया है और जो सजा है वो 19 दिसंबर को सुनाएगी। कार्यक्रम में अब वक्त है आपकी भेजी चिट्ठियों की।
दोस्तों नमस्कार, आज आपकी राय मैं एक नए अंदाज में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आमतौर पर सूर्यांशी पांडे या इंदु पांडे ये सब लोग रहते थे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपकी चिट्ठियां पढ़ूंगा और उन चिट्ठियों का जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जवाब पहले दिया जा चुका है। पहली चिट्ठी है विकास कुशवाहा की, सिवान बिहार से। लिखते हैं, बता नहीं सकता कितना कष्ट हो रहा है, अपार दुख हो रहा है, आपने ये निर्णय कैसे लिया बीबीसी रेडियो बंद करने का। ज्ञानचंद यादव लिखते हैं, बीबीसी हिंदी रेडियो के एडिटर से अनुरोध है कि रेडियो न्यूज़ को बंद न करें। भीमाराम जाट लिखते हैं, मैं बीबीसी का 1999 से श्रोता हूं, कृपया इन कार्यक्रमों को जारी रखें। पहले भी एक बार बीबीसी की सेवाएं बंद होने की बात चली थी, लेकिन श्रोताओं की मांग पर इसे जारी रखा गया था। जय बल्लभ कैंथोला नजीबाबाद बिजनौर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, आज 13 नवंबर को दिनभर कार्यक्रम में बीबीसी हिंदी सेवा के बंद होने के समाचार से मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि पिछले 50 साल से मैं बीबीसी का श्रोता रहा हूं। इसी तरह कुवैत से मोहम्मद अमीरुद्दीन लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। ये हम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि बीबीसी हिंदी रेडियो बंद हो रहा है, ऐसा ना करें। अगली चिट्ठी जालंधर से कर्नल प्रहलाद सिंह रंधावा ने लिखी है, ये मैंने आज क्या सुना, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। अगर आप शॉर्ट वेव पर प्रसारित नहीं कर सकते तो कम से कम इंटरनेट पर तो जारी रख सकते हैं, उसमें क्या मुश्किल है। आगे लिखते हैं, मैं पिछले 45 साल से आपको सुन रहा हूं, मुझे जबरदस्त झटका लगा है, बहुत परेशान हूं। अगला ईमेल है के बोरा का, लिखते हैं, बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि बीबीसी रेडियो की हिंदी सर्विस का प्रसारण बंद किया जा रहा है। मेरे पिता 93 वर्ष के हैं और हर संभव दिन भर को सुनते हैं। मैं 43 का हूं और मेरा बेटा 10 साल का है और हम दोनों रात को सोने से पहले रेडियो प्रसारण सुनते हैं। दमोह मध्य प्रदेश से श्रीकांत चौधरी ने लिखा है, अभी दिन भर के कार्यक्रम में मैंने सुना कि आगे कुछ ही दिनों में बीबीसी हिंदी का सुबह और शाम का कार्यक्रम बंद किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है और आश्चर्य का विषय है, क्योंकि बीबीसी हिंदी की लोकप्रियता तो निर्विवाद है। भले ही कुछ विशिष्ट विचारधारा के लोग जो तटस्थ निष्पक्ष निर्भीक यथार्थवादी विश्लेषण का समाचार पसंद नहीं करते और अपनी विचारधारा और आस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया रिपोर्टर्स सुनकर तिलमिला जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारी और चिट्ठियां आई हैं, सब चिट्ठियां पढ़ना संभव भी नहीं है, लेकिन कुछ एक चिट्ठियां मैं पढ़ सकता हूं, ईमेल पढ़ सकता हूं। अगला ईमेल है फजलुल का, जिन्होंने गांव पिहुली पोस्ट ताजपुर देहमा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लिखा है। लिखते हैं कि मुझे ये सुनकर दुख हो रहा है कि आप बीबीसी हिंदी रेडियो का प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। मैं 2006 से आपको सुन रहा हूँ, मेरी उम्र 30 साल है। यदि आप रेडियो प्रोग्राम बंद कर देंगे तो सुदूर जगहों तक कैसे कोई सुनेगा, जहां नेट नहीं है या नेट बंद है। ये अगला ईमेल है आपका पुराना श्रोता डॉक्टर एस आर लखईपुरी दुबई से। लिखते हैं, आज 13 दिसंबर के दिन भर में सुना कि बीबीसी का रेडियो प्रसारण जल्दी बंद होने वाला है। ये सुनकर दिल टूट गया। बचपन से बीबीसी सुनता आ रहा हूँ। सिर्फ बीबीसी ही एक ऐसा समाचार माध्यम है जिस पर भरोसा करता हूँ। एक बहुत लंबा ईमेल लिखा है उत्तराखंड जिला टिहरी गढ़वाल से राकेश राणा ने। उन्होंने लिखा है, शॉर्टवेव रेडियो की सेवा को बंद करने का समाचार जब मैंने बीबीसी हिंदी के ऐप पर पढ़ा तो यकीन मानिए ऐसा लगे कि अंदर कुछ टूट गया है। 2003 में उस समय बीबीसी सुनना शुरू किया था जब इराक पर अमरीकी हमला शुरू हुआ था, और धीरे धीरे बीबीसी मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। कितनों को याद करूँ, कुरबान अली, आलोक जोशी, ममता गुप्ता, अचला शर्मा, शिवकांत, उर्मिला शेखावत, रूपा झा, मुकेश, ऐसे बहुत नाम हैं। और आगे लिखते हैं कि मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक ईमेल आया है आनंद गुजरात से पीजे जोस का। जोस साहब ने अंग्रेजी में लिखा है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि लाखों श्रोताओं को अब बीबीसी का प्रसारण नहीं सुनाई देगा। मैं 1977 से आपके प्रसारण सुन रहा हूँ, और बहुत आगे लंबी चिट्ठी लिखी है जिसको पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। अगला ईमेल लिखा है नंदलाल सिंह मौर्य ने, ग्राम बसदेवा पोस्ट भोरे जिला गोपालगंज से। लिखते हैं, मैं बीबीसी का बहुत पुराना रेडियो श्रोता था, लेकिन अब मैं ज़्यादातर मोबाइल पर ही सुनता हूँ। मैं रेडियो पर कार्यक्रम पहली बार 10 साल की उम्र में 1993 में सुनना शुरू किया था, जिसका एक अजीब सा किस्सा है। मैं अब सिर्फ बीबीसी की खबरों पर भरोसा करता हूँ। एक हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल। उन्होंने लिखा है कि 13 दिसंबर को दिन भर में बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा द्वारा ये हृदय विदारक सूचना दी गई कि बीबीसी हिंदी बंद हो रहा है। हालांकि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, फिर भी 13 तारीख को बीबीसी हिंदी प्रसारण बंद किए जाने की घोषणा सुनकर मुझे भी लगा कि 13 का अंक मनहूस होता है। एक और पुराने श्रोता जंग बहादुर सिंह ने गोलपहाड़ी जमशेदपुर से लिखा है कि हम श्रोताओं के अरमानों पर बमबारी करके आपने तहस नहस कर दिया। आप ही बताइए कि आपके दिलों पर क्या बीतेगी जब आप कहीं से मांगलिक समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हों और आपको शोक संदेश प्राप्त हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में शोधार्थी हैं धीरज कुमार शर्मा। वो कहते हैं कि पिछले 11 वर्षों से आपके सभी कार्यक्रम को पहले रेडियो से, बाद में कुछ सालों से मोबाइल के माध्यम से सुनता आ रहा हूँ। शॉर्टवेव प्रसारण बंद करने का कारण वाजिब है, फिर भी आप नमस्कार भारत और दिन भर का कार्यक्रम को डिजिटल माध्यमों पर नियमित तौर पर प्रसारित करें तो हम जैसे श्रोताओं को और छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी चिट्ठियाँ, बहुत सारे ईमेल्स हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अब आपकी राय का ये अंक यहीं समाप्त करता हूँ। चलते चलते पता बता देता हूँ आपको, आप लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर। इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं, और अगर चिट्ठी लिखना चाहें तो लिखिएगा बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। नमस्कार।
और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित नागरिक कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों से की संयम बरतने की अपील। दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में किया दोषी करार। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भेजा जाएगा। ईरान में एक अग्रणी मानवाधिकार समूह का दावा, ईरान के अधिकारी पूरे देश में पिछले महीने भड़के विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए लोगों को कर रहे हैं गिरफ्तार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात का समय है सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत। शाकिर आलम के साथ मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।